नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ना नामनि गौरात्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा वांच कल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद जिसमें विशेष रूप से ऊति कर्म वासनाओं का वर्णन है। तीन प्रकार की कर्म वासनाएं होती हैं, दैवी कर्म वासनाएं, मानवी कर्म वासनाएं और असुरी कर्म वासनाएं, जिनके द्वारा हमारा शरीर बनता है। तो पांच अध्यायों में असुरी कर्म वासनाओं के अंतर्गत हिरण्यकशिपु के चरित्र का वर्णन है। पांच अध्यायों में देवी वासनाओं के अंतर्गत प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन है। और पांच अध्यायों में वर्ण आश्रम का विभाजन और मानव जो है कर्म वासना का वर्णन है। तो इस समय हम प्रहलाद महाराज की देवी जो कर्म वासनाएं हैं, देवी वासनाओं का मतलब जिसका हृदय भगवान में लगा हुआ है, उसका वर्णन सुन रहे हैं। और प्रहलाद जी से पहले तो उसके पिता ने पूछा कि क्या सीखे हो, और उसके उत्तर सुन के वो दुखी तो हुए परंतु हंसे कि बच्चा है, किसी ने इसकी बुद्धि को बिगाड़ा है। और कहा छंड और अमर को कि अब इसके ऊपर ध्यान रखो, कहीं हमारे शत्रु का कोई गुप्तचर इसकी बुद्धि को बिगाड़ रहा है। तो छंड और अमर जो शुक्राचार्य के पुत्र और शिष्य जो प्रहलाद बालक की और अन्य असुर बालकों की शिक्षा का जो देखभाल कर रहे थे, उन्होंने फिर पूछा कि आपको ये किसने सिखाया, आपने जो अपने पिता को बताया, उत्तर दिया असद ग्रह वाला, ये आपने कहाँ से सीखा? तो उनको क्या उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये हमारा प्रसंग चल रहा है। एक सिद्धांत भगवत गीता का है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्रद्धालु को, अश्रद्धालु को मेरे इस गीता का ज्ञान अथवा मेरी भक्ति का ज्ञान नहीं सुनाना। तो प्रहलाद महाराज इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि न हरिणाकश्यपु श्रद्धालु है और न शंडोक अनक श्रद्धालु है, तो इनको सच नहीं बता रहे हैं कि मैं कहां से सीख के आया। परंतु जब यही प्रश्न वो जो असुर बालक पूछेंगे, तब तो साफ बता देंगे कि मेरे गुरु नारद जी ने मुझे सिखाया है। असुर बालक जो है वो अभी तक ईर्ष्यालु नहीं है, अश्रद्धालु नहीं है, तो उनके प्रश्न के ऊपर यही प्रश्न उन्होंने पूछा। जो प्रश्न हिरण्यकश्यप ने पूछा, जो संड और अमरक ने पूछा, वही प्रश्न बालकों ने पूछा, उनको बता दिया कि मैं ये सीख के आया। बोला आप हमारी उम्र के? बोला मैं माता के गर्भ में सीखा। तो ये एक बहुत बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, और इसमें क्यों नहीं बता रहे हैं उनको, क्योंकि और अधिक वो विरोध करेंगे भगवान का, और अधिक पाप करेंगे, और अधिक अधम गति को पाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्रचार न करने का भी उनके ऊपर कृपा ही करना है। और दूसरा, कल का श्लोक परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कह रहे थे कि पहले भगवान को प्रणाम किया। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए और सामने वाला अश्रद्धालु है, और प्रश्न भी जटिल और गंभीर है, जिसके उत्तर को वास्तव में देंगे तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, तो भगवान का प्रार्थना करके शरण लेना चाहिए। एक अच्छी बात प्रहलाद महाराज से सीखने को मिलती है, भगवान का शरण लिया, और भगवान का शरण लेके फिर उत्तर दे रहे हैं कि भगवान आपकी माया ने क्या चमत्कार दिखाया है संसार में, सब मेरे तेरे में लगे हुए हैं। तो माया की परिभाषा सादी है, सिंपल परिभाषा माया की है, मेरा और तेरा ये है माया। और कल माया के प्रभाव का हमने विशेष रूप से श्रवण सुना था। आज आगे के श्लोक में जब उन्होंने कहा ना, प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान को नमस्कार करता हूं, तो शंडक और अमर ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दो, ये नमस्कार तुम्हारा ठीक नहीं है, नमस्कार कर रहे हो क्या, कर कह रहे हो, हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दो ना। तो उसका उत्तर दे रहे, स यदानुवर्त पुंशां पशो बुद्धिर विविध्यते अन्य एष तथा अन्यां इति भेद गता अस्सति। स का मतलब है भगवान, और यदा मतलब जब, अनुवर्ते मतलब कृपा करेगा, करुणा करेगा, अथवा किसी को अपना मान लेगा। तो जब भगवान, पुनश्याम का मतलब किसी भाग्यशाली को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के ऊपर जब भगवान अनुग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, पशु बुद्धि विविध्यते, उसकी जो पशु बुद्धि है उसका नाश कर देते हैं। विभिद्यते विशेष, विद्यते विशेष रूप से उसका नाम निशान मिटा देते हैं। तो पशु बुद्धि है क्या? तो पहला प्रश्न है कि भगवान अनुग्रह जब करते हैं तो क्या होता है, पशु बुद्धि जाती है। तो बोला पशु बुद्धि क्या है? बोला ये पराया है अन्य, अन्य ये दूसरा है, एश ये अन्य ये दूसरा है, तथा अन्य अहम मैं इनसे अलग हूं, ये मेरा है ये तेरा है, इति इस प्रकार का भेद, भेद का मतलब मैं अपना पराया कहना, ये क्या है, अस्ति है, गत अस्ति, सती और असति। तो एक बुद्धि है सती, एक है असती बुद्धि। तो बुद्धि के दो विभाग कर दें तो एक सती बुद्धि जो है, सती मती,
जो सदा भगवान का चिंतन करती है वो सतीमती, और असती बुद्धि है पुरंजनी। असती बुद्धि है पुरंजनी, जो शरीर में मेरा और भोग में लगी हुई है। तो बुद्धि में जो पशु बुद्धि है, वो तो पशु बुद्धि कहा जाए तो भोग वाली बुद्धि है, मेरे तेरे वाली बुद्धि है। उसका विनाश कब होता है? जब भगवान किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, स के लिखा है परम पुरुष भगवान, भगवान जब अनुवर्तते हैं, किसी का किसी से प्रसन्न होते हैं अथवा किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं। और पशु बुद्धि, पशु बुद्धि मैं और मेरा, प्रभुपाद ने एक और बात शब्द लिखा है पशु बुद्धि का। पशु बुद्धि के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कहते हैं मैं महान हूं, मैं भगवान हूं, मैं महान हूं, मैं भगवान हूं, ये है पशु बुद्धि। इतना भी नहीं, मैं भगवान हूं और सब भगवान हूं। ये प्रभुपाद ने उस वक्त जो प्रचलित पाश्चात्य देशों में प्रचार चल रहा था तथा कथित योगियों का कि मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, तो इसको प्रभुपाद ने पशु बुद्धि कहा। और तात्पर्य भी इसी दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। विभिद्यते नाश हो जाती है, ये दूसरा है अन्य है, और ये और अन्य है, मैं इनसे अन्य हूं। ये जो भेद है, प्रभुपाद ने लिखा असती के लिए लिखा है, वो बड़ा डिसास्टर है, डिसास्ट्रस है, वो बड़ा घातक है, बड़ा दुखदाई है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब परम पुरुष भगवान प्रसन्न होते हैं किसी भाग्यशाली जीव के साथ, बोला कब प्रसन्न होते हैं? प्रभुपाद ने तात्पर्य लिख दिया कि भगवान प्रसन्न कब किससे होते हैं, बोला जब कोई भक्ति करता है। प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य अनुवाद में तात्पर्य दे दिया कि जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो वो पंडित हो जाता है। प्रभुपाद ने पशु बुद्धि को नाश करने के लिए शब्द दिया है, वो पंडित हो जाता है। ये पंडित प्रभुपाद ने जब लिखा तो प्रभुपाद जी के मन में कौन सा श्लोक आया होगा? ब्रह्मणि गवि हस्त नहीं सुनी चय वसो पाके च पंडिता समदर्शन, तो मेरा तेरा नहीं सोचता है वो। तो यहां प्रभुपाद ने, वो पंडित हो गया, अब वो शत्रु और मित्र में और अपने आप में कोई भेद नहीं करता है। और ये लक्षण है भी तो भक्त का, 12वें अध्याय में भगवत गीता में ये भक्त के लक्षण है ना, यथा मित्र शत्रु बराबर जो समझे, सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान यो शीतुष्ण सुख दुखेशु सम, तो ये भक्त के लक्षण है। तो प्रभुपाद ने कहा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ये भक्ति के लक्षण से ही प्रसन्न होते हैं। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धि से अब वो सोचता है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है अनुवाद में, कि भेद बुद्धि गई तो क्या सोचेगा? बोला हम सब भगवान के नित्य दास हैं, ये पशु बुद्धि जाने का प्रमाण है। पशु बुद्धि किसकी चली गई? जो सबको कृष्ण का दास समझता है, अपने आप को भी और सबको भी। और पशु बुद्धि क्या है? अपने को भगवान और सबको भगवान समझता है। तो ये विभाजन हो गया इस श्लोक में ही प्रभुपाद जी के अनुवाद के तात्, अनुवाद के अंतर्गत ये विभाजन हो गया कि पशु बुद्धि ये है कि अपने को भगवान और सबको भगवान समझे, और पशु बुद्धि नाश होती है भक्ति से भगवान की कृपा से, तो समझते हैं हम सब भगवान के सेवक हैं। और जब वो ऐसे समझता है तो फिर किसी में कोई भेद नहीं, हम सब सेवक हैं तो भेद क्या है? चक्रवर्ती पाद को बाद में पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद जी का। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, मैं उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपकी बुद्धि में ये भेद कहां से आया? विष्णु की प्रशंसा कर रहे हो, हमने तो नहीं सिखाया है। तो उत्तर देते हैं कि भगवान की जब किसी के ऊपर अनुग्रह होता है तो पशु बुद्धि का नाश हो जाता है। तो वो पशु बुद्धि क्या है? बोला मेरा और तेरा, ये मेरा शत्रु ये मेरा मित्र, ये पशु बुद्धि है। फिर एक श्लोक प्रभुपाद जी इस के प्रमाण चक्रवर्ती पाद इसके प्रमाण में देते हैं, भागवत के दसम स्कंद के 24वें अध्याय के 4थे श्लोक, ये गोवर्धन पूजा के अंतर्गत है लगता है।
नहि गोप्यम हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामीह असत्य अस्वपर दृष्टिनां अमृत उदास्त विद्विषाम।
ये भगवान के ही शब्द हैं। कोई भी चीज गोपनीय अपनों से नहीं रखता, साधु कोई चीज छुपा के नहीं रखता है। साधु का जीवन खुला किताब है, कोई चीज छुपा के नहीं रखता है, अपने को और दूसरों को समान समझता है, मैं और मेरा कभी नहीं करता है, अपने मित्र और शत्रु को समान समझता है और कभी मध्य स्थित उसके साथ भी समान भाव रखता है। तो ये श्लोक चक्रवर्ती पाद ने भागवत से दिया है, पशु बुद्धि नाश जिसकी है उसका दृष्टिकोण कैसा होता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते प्रहलाद महाराज के जब शिक्षकों ने पूछा, और प्रभुपाद दोनों को साथ लेते हैं, और उसके असुर पिता ने भी जब पूछा कि उसकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई है। अब प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ी हुई है कि हिरण्यकश्यप की बुद्धि बिगड़ी हुई है? हाँ, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे ना, छोटा रूप धारण करके, तो लंकनी का कहा चोर अंदर कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान ने कहा चोर मैं के रावण, सीता को चुरा के आया रावण और मैं ढूंढने जा रहा हूं, तो चोर कौन हुआ दोनों में से बताओ जरा? तो यहां चोर कौन भाई, बुद्धि किसकी खराब है? इसको कहते हैं भौतिक, जो कल महाराज कह रहे थे जिसकी बुद्धि को माया ने ग्रस्त कर लिया। और किसकी को कर लिया है कोई पूछे तो? माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। ये तो साफ सिद्धांत है, बहुत स्पष्ट सिद्धांत है। माया के जिसकी बुद्धि को माया ने मुग्ध कर लिया है उसको अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। कृष्ण कृपा कहला दिया वेद पुराण, तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं, स्वयं रूपे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, और फिर व्यासदेव का अवतार लेके शास्त्र देते हैं, और फिर गुरु जी को भेज देते हैं जो हमारा शास्त्र सिखा के और मार्गदर्शन करते हैं। तो ये तीन चीजें चाहिए, और इसमें से प्रहलाद महाराज को नारद ऋषि का गुरु का आशीर्वाद मिला, तो मोहबुद्धि समाप्त हो गई। तो प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी है, तो ये प्रश्न ही अपने आप में ठीक नहीं है। और ये प्रश्न आजकल प्रचलित है, ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप चला गया बहुत हजारों साल पहले और शंड और मर्क चले गए, अब कोई ऐसा नहीं पूछता है। आप सबके पुराने मित्र जितने हैं और आपके परिवार वाले आपको कहते हैं आप सब बिगड़ गए, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या हो गया है आपको? ये कोई उम्र है हरे कृष्णा जपने की, मंदिर में जाने के दिन है आपके? ये कहते हैं कि नहीं कहते? एक प्रेसिडेंट था मॉरिशस का, हमको कह रहा था हिरणा हम हैं इस्कान के अध्यक्ष लेकिन काम हमारे हिरण्यकश्यप जैसे हैं। मैंने बोला कैसे? बोला हमारा बच्चा कहता है कि मंदिर में चलना है, हम उसको कहते हैं नहीं तुम पढ़ो बैठ के। तो ये हिरण्यकश्यप कहता था और कौन कहता था? तो सच कहें तो ये कोई समाप्त नहीं कहे हो गई ये प्रणाली, ये प्रश्न आज भी चल रहे हैं समाज के अंदर। बहुत दिनों से वो आ रहा था मीडिया पे, कोई बच्चे को भक्त बना लिया, वो उससे इंटरव्यू लेके कह रहे थे इसको बिगाड़ दिया है, और कोर्ट में केस भी चला प्रभुपाद के समय ने ब्रेन वॉश कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हाँ हम सबका दिमाग साफ कर रहे हैं, अंदर कचरा भूसा भरा हुआ है, तो हम कौन कहता है नहीं साफ कर रहे हैं? हम तो यही तो कहे, चेतो दर्पण तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं। तो वो समझते हैं पहले हमारा खराब को अच्छा समझना, अच्छे को खराब समझना, ये कौन से गुण की वृत्ति है। हाँ, भगवत गीता में एक गुण है जिसका है अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझना, तमो गुण की वृत्ति है, असुरी वृत्ति है। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न इस धरती के ऊपर सदा ही पशु बुद्धि वालों का होता ही रहता है। तो इससे कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत पुरानी बात है, ये आज भी चल रही है। और फिर इसलिए प्रहलाद महाराज हमारे लिए आइडल होना चाहिए कि हमें उत्तर देना आना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा, जहां तक मेरा विचार है मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई है, मेरी बुद्धि में कोई बिगाड़ नहीं आया है, परंतु भगवान, परंतु दो बातें लिखते हैं कि मेरे गुरुदेव और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब मैं ये सीख गया हूं कि कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि गुरु और कृष्ण की कृपा से। ये जब दो शब्द लिखे हैं तो कौन सा श्लोक प्रभुपाद जी के दिमाग में आया होगा जब ये दो शब्द लिखे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि जब प्रभुपाद कुछ लिखते हैं तो एकदम शास्त्र का प्रमाण उनके हृदय पटल पे आ जाता है, उसके दृष्टिकोण से लिखते हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं। शास्त्र को भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं तो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, गुरु और कृष्ण की कृपा से ये हुआ है, तो ये भी प्रमाण हो गया कि नहीं हुआ, शास्त्र प्रमाण है ना। तो क्या सीख रहे हो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम सबके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम वास्तव में अपने को श्री कृष्ण के नित्य दास मानेंगे, तो समझो कि हमारी बुद्धि पशु बुद्धि नहीं रह गई। तो ये एक बात पक्की करनी है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, परंतु हम ये हमारे को कौन सिखाता है, गुरुदेव। जब नाम बदलता है तो सबके पीछे दास लगाता है कि नहीं। और हम इतने कई जन्मों के बिगड़े हुए हैं पशु बुद्धि में, कोई अपना नाम पूछता है तो दास नहीं बताता है, आप लोगों से पूछूंगा तो दास कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अपना नाम बताते, सच्चा है कि झूठ है, ईमानदारी से बोलो, कोई दास अपने नाम के साथ पीछे कहता है, नहीं कहता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि पहाड़ पे जब गाड़ी चढ़ती है ना तो उसको दो इंजन लगाते हैं, एक आगे एक पीछे, देखा ना पहाड़ वाली गाड़ी पे। तो ये कलयुग के अंदर एक दास अपने नाम के आगे लगाओ, एक पीछे लगाओ, तो गाड़ी आगे चढ़ेगी, नहीं तो नहीं चढ़ेगी। कोई भी आज से नाम पूछे ना, दास सर्वभौम दास, ऐसे कुछ डबल दास लगाना तब गाड़ी चलेगी। आप दास को बिल्कुल मत भूलना, ये दास को भूलेंगे तो कोई घास भी नहीं डालेगा। ये दास ही हमारे को सच में संभाल के रखा हुआ है कि भगवान के हैं, दास का मतलब भगवान के हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन में है, अपने नाम के साथ दास को जोड़ के रखना। ये वैष्णव में बहुत बड़ी प्रसिद्ध बात है। जब कुंभ मेला के महंत के लिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज का नाम प्रस्तावित किया था, उसमें लिखा हुआ था लोकनाथ गोस्वामी, तो वो कहने लगे दास होना चाहिए वैष्णव में, बिना दास के कैसे होगा भाई, दास नहीं होगा तो वैष्णव में कैसे हम उसको स्वीकार करेंगे। ये वो साधु समाज ने प्रश्न उठाया। महाराज कहते हैं प्रभुपाद ने मुझे ये नाम दिया है, मैं क्या करूं। अब वो कहते हैं बिना दास के तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दास माने वैष्णव में दास शब्द तो लगना ही लगना है। तो ये हमारी बुद्धि में जब जिस दिन आ जाए कि हम भगवान के नित्य दास, दास भी नहीं, महाप्रभु ने तो कहा दास 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 अनुदास। तो इसे पुराने वैष्णव लिखते थे अनुदास दास अनुदास, ये अपनी परिभाषा लिखना बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये विचार आ गया बोला, ये विचार क्यों नहीं आता है, क्योंकि माया ने हमारे को भ्रमित करके रखा है और उसने हमको सिखा दिया है कि हम भगवान से अलग हैं और ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। तो भगवान से अलग कौन करता है? माया करती है। भगवान से हमको अलग कौन करता है? माया। कल महाप्रभु महाराज परम पूज्य महाराज श्री माया का वर्णन कर रहे थे, मेरे को पुराना उदाहरण हमें सदा देता हूं। माया के दो काम है, एक है आवरणात्मक मतलब ढक देना, और दूसरा विक्षेप, इसका मतलब भ्रम में डाल देना। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हम आपको दिया करते थे बाहर प्रचार में, वो क्या, सिनेमा हॉल में कोई जाता है जब, तो अपने सगे संबंधी मित्र के साथ जाता है, भाई के मित्र के पति के पत्नी के मित्र के साथ जाता है, सिनेमा हॉल भर जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं, अंधेरा करते हैं ना, जिसके साथ गए थे वो तो दिखता नहीं है, अंधेरा हो गया, और फिर स्क्रीन के ऊपर बड़ी फिल्म चालू करते हैं, और 3 घंटे तक हम उस फिल्म में हीरो हीरोइन को समझते हैं, मैं और वो एक, उसको दुख आया मेरे आंसू बहते हैं, उसको सुख आया मैं, और जो मेरे साथ आया उसको भूल गए, और उस फिल्म में 3 घंटे इतने पागल हो गए, वो पैसे कमा रहा है और हम रो रहे हैं मुफ्त में। भाई वो जो हवा जो वो जो फिल्म में होता है उसको कोई तकलीफ होती है क्या? कुछ नहीं होता है, वो पैसे कमा रहा है और हम रो रहे हैं। ये हाल है माया ने, भगवान हमारे साथ आए हैं, वो हृदय में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डाल दिया पर्दा, और दुनिया का एक बड़ा स्क्रीन के ऊपर घर दुकान मकान पितृ पुत्र ये सब इतना बड़ा खेल बनाया, और ये 100 साल की फिल्म चल रही है, और हम उसमें इतने अटके हुए हैं कि जो साथ में आया वो भूल गए। वहां तो 3 घंटे के बाद कम से कम जो साथ आया है वो याद तो आता है, यहां तो 100 साल में भी याद नहीं आता है। ये है माया। तो ये माया के दो काम है, माया हमको भगवान से अलग कर देती है। भगवान से अपने आप को अलग समझना तो फिर संसार में झगड़ा चालू। हम भगवान के सेवक हैं तो कोई झगड़ा नहीं। ये एक श्लोक जो बड़ा प्रसिद्ध है, शांति वाला श्लोक, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसको 2 दिन चलाओ तो अच्छा है। कल महाराज कह रहे थे, प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, ये गलती है, ये गलत विचारधारा है, और इसलिए अब मैं इसको सुधार दिया है। तो गलत विचारधारा क्या है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मैं भगवान से अलग हूं। ये जो श्लोक है प्रसिद्ध, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्व स्वर्ग सर्वभूतामनम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? तो इसका उदाहरण ये है, शांति तब मिलेगी। अब दुनिया में झगड़े का कारण क्या है? मैं भोगता हूं, नहीं तुम भोगता हो, मैं इसको भोगूंगा तुम इसको भोगो, तो झगड़ा होगा ना भाई। झगड़े का कारण क्या है? भोगता होना ना, तो भगवान ही भोगता है, हम सब सेवक हैं तो झगड़ा खत्म। और दूसरा झगड़े का कारण क्या है? मैं मालिक हूं, नहीं मैं मालिक हूं, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, तो भगवान ही कहता मैं सर्वलोक महेश्वरम, तो झगड़ा खत्म हो गया ना। तो शांति कब होगी? जब भगवान को भोगता मांगेंगे, भगवान को स्वामी मानेंगे, और भगवान ही हमारा भला चाहने वाला है, शुभ चिंतक है, सुहृद है, तो शांति हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए अब जो सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है ऐसे मैं नहीं सोचता हूं, मैं अब ठीक तरह सोचता हूं कि मैं नित्य श्री भगवान का दास हूं, और मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, जो मेरा स्वामी है। और अब एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, अब सेवक और स्वामी एकत्व में है। प्रभुपाद जी ये क्योंकि एक भाषा ये है निर्विशेष मायावादियों की, हम और भगवान एक हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते सेवक और भगवान, सेवक और स्वामी भी एक है, ये भी एक हो गए। किस में एक हो गए? दोनों का कोई इंटरेस्ट अलग नहीं है। एक सेवक सेवा करना चाहता है भगवान की इच्छा को, पुत्र दोनों एक हो गया इच्छा। जब कभी कभी कोई अच्छा पुत्र होता है तो बाप कहता मुझ में मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, ऐसे कहते हैं ना भाई, इसको दे दो मुझे दे दो, एक ही बात है। तो भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है, वो एक हो गए। इसका मतलब नहीं है कि निर्विशेषवादियों वाला एक हो गए, विचारधारा में एक हो गए। अब भगवान स्वामी, हम सेवक, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक कैसे हो गए? क्या शब्द अर्जुन ने कहा जिससे भगवान और कृष्ण एक हो गए? करिष्यतव वचनम, करिष्यतव वचनम, आपके जो कहोगे वह करूंगा, एक हो गए। जो भगवान की इच्छा वो अर्जुन की इच्छा, ये हो गए एक, इच्छा में एक होना है, तो भेद खत्म हो गया। तो ये भाव प्रहलाद महाराज कहते हैं, असुर जो है वो सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, परंतु वैष्णव जो है वो कहता है कि सभी जब भगवान के सेवक हैं तो हम सभी एक स्तर पे हैं, सभी सेवक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो फिर झगड़ा है ही नहीं, तो सेवक सेवक में झगड़ा क्यों होना चाहिए? परंतु प्रभुपाद के इसलिए वैष्णव सब जीवों को न कोई मित्र कहते हैं न शत्रु कहते हैं, परंतु सारे ही मिलकर कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहते हैं और सबको कहते हैं भगवान के सेवक बन जाओ और अपना बहुत बहुमूल्य समय व्यर्थ मत गमाओ संसार में। बोला व्यर्थ समय कैसे जाता है संसार में, लोगों का व्यर्थ समय कैसे जा रहा है? अब ये प्रभुपाद ने लिखा है, ये लोग पढ़ेंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे। क्या लिखा है? मेरा ये देश है, मेरा ये समाज है, मेरा ये अपना एक ग्रुप है, ये मेरा पक्ष है एक, ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, यही सब लोग कर रहे हैं। ये जो बुद्धि है ये भेद बुद्धि है। सबको कृष्ण भावना के स्तर पे आना चाहिए और भगवान के सेवक होने के एकत्व को जानना चाहिए। भले 84 लाख जूनियां हैं, वैष्णव सदा ही भगवान से एकत्व में जुड़ा हुआ है। ईशन उपनिषद में लिखा है एकत्वम अनुपश्यतः, और प्रभुपाद ने दो कई बार एक एक लिख दिया, 3 बार, तो अब प्रमाण दे रहे हैं कि ईशन उपनिषद में क्या लिखा है। ये कौन सा श्लोक? नंबर 7 है, एकत्वम अनुपश्यतः। कितने श्लोक हैं ईशन उपनिषद में? 7। बिल्कुल पुराने जमाने में, प्रभुपाद के जमाने में ईशन उपनिषद के श्लोक भक्त सब याद करते थे पूरे के पूरे, उनको महाप्रसाद की प्लेट मिलती थी, ये उनको उसका पुरस्कार हुआ करता था। और बहुत से नए नए भक्तों को भी ये पूरे का पूरा याद हुआ करता था श्लोक। अब हमको कितने श्लोक है ये भी सोचना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि शास्त्र के अध्ययन में हम थोड़े से, और उसका कारण यह है कि उस जमाने में ज्यादा कोई पूजा मंदिर की और इतना सेवा नहीं थी, केवल शास्त्र ही पढ़ना था और पुस्तक वितरण करने और कीर्तन ही करना था, 3 ही काम थे। अब हमारे पास सेवाएं बढ़ गई हैं, लेकिन ये लॉकडाउन में एक कौन ये संकल्प करता है कि ये 15 दिन में मैं ईशो उपनिषद के सारे श्लोक याद कर लूंगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? कौन करेगा ये? हम नहीं करेंगे तो क्यों कौन करेगा? और केवल करना नहीं, उसका अर्थ भी आना चाहिए, नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ चंदन तो 1 महीने 15 दिन घिसते हैं, बाकी दिन क्या कर रहे हैं? तो यही तो हमको करना है। और करना क्या? मैं तो पहले मैं एक बार पूना में कहा था कि 700 श्लोक भगवत गीता के अगर हमने याद नहीं किए 10 साल कृष्ण में भक्त बने तो हमने क्या किया, क्या करने आए हैं हम? ये समझ में आता आना चाहिए ना, इतना काम हम नहीं कर सकते, 700 श्लोक याद नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हम अभ्यास नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे। एक अध्याय का रोज पाठ करना शुरू करो ना, तो बिना सोच विचार के बिना प्रयास के ये श्लोक याद हो जाएंगे। एक दुबई में एक हमारे मित्र थे, उसने लाल बत्ती के ऊपर गाड़ियों में पूरी गीता याद की थी, उस समय 17 अध्याय याद किए थे। वहां आधा आधा घंटा लाल बत्ती पे गाड़ी खड़ी हो जाती है और वो कैसेट से श्लोक याद करता था। एक एम्स का एक सर्जन है, डिपार्टमेंट का हेड है, पूरी भगवद गीता सारी याद, और जब ऑपरेशन करता है गीता का सब पूरा अध्याय पढ़ता रहता है। हमें सच कह, वो सच मुझे कहता है मैं, और गीता का अध्याय पढ़ता रहे, तस्मात सर्वेशु कालेशु, वो कहता है तस्मात भगवान का ये श्लोक है, अपना कार्य करो और मेरा सुमरण करो। ये श्लोक कह के मैं उसको दिखाने गया, एक बार मेरे को तकलीफ थी, वो मेरे को देख रहा है, मुझे देख रहा है युक्त आहार विहार सब वाला श्लोक पढ़ा नहीं कि आपने इतने मोटे हो गए। मुझे सीधा यही कहा कि युक्त आहार विहार वाला श्लोक कहाँ गया आपका। और फिर कहा कि मैं कहा कि आपके प्रवचन जो टीवी पे आता था वो मैं देखता था। उसने कहा वो बड़ा मित्र हो गया, अभी तक मित्र है। और उसकी महानता ये है कि वो ऑपरेशन मेरी खुद नहीं किया, बड़ा खुद ही सर्जन है। बोला नहीं आपकी ऑपरेशन मैं एक और से कराना चाहता हूँ जिसमें आपका लाभ होगा। और एक दूसरे प्रोफेसर को कहा और मेरा ऑपरेशन उससे कराया। 15 दिन में 20 दिन रहा अस्पताल में। और पूरी उनको उस समय कथा रोज दोपहर में कथा करते थे। तो ये गीता जब ऐसे लोग याद कर सकते हैं जो सारा दिन से काम में लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हमसे क्यों नहीं याद होती है, ये सोचने का विषय है कि नहीं। एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए, 15-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभ्यास श्लोकों को पढ़ने का अध्याय आदत तो डालना चाहिए ना। और भागवत का अध्याय पढ़ना एक, इसके उपरांत वो पढ़ना शुरू करो, कुछ करो, आना चाहिए। इतने प्रभुपाद इतने सारे श्लोक बोलते बोलते कथा में इतने श्लोक कहते हैं, तो पढ़े होंगे तब कहे होंगे ना, याद किए होंगे तब कहे होंगे ना। तो हमको तो प्रभुपाद ने कहा आप ऐसे करो जैसे मैंने किया है, तो ये तो हमको आना चाहिए ना कम से कम प्रमाण के रूप से। तो यहां बहुत अच्छी बात लिखी, क्या एकत्वम अनुपश्यतः। भक्त को देखना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है और हम सब भगवान के सेवक हैं। ऐसी दृष्टि को एकत्वम कहते हैं। और सेवक और स्वामी दोनों अपने आध्यात्मिक स्थिति में एक हो जाएंगे, दोनों सच्चिदानंद है। अब दोनों भौतिक, भगवान तो नित्य है ही, हम तो हमारे ऊपर जो भौतिक पर्दा था वो हमने उतार के फेंक दिया, पशु बुद्धि चली गई, तो फिर हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये प्रभुपाद जी की भाषा है, इसको एकत्वम कहते हैं। तो ये वैष्णव का एकत्वम का जो विचार है वो मायावादियों से अलग है। तो मायावादी भी एकत्व कहते हैं। और तात्पर्य इस श्लोक को कल फिर चलाएं, तात्पर्य यहां तक छोड़ें। यहां मेरा आज विचार था कि ये जो हमारा प्रायः जो क्लास होता है ना, ये फॉर्मेलिटी हो जाती है, इसमें हम अध्ययन का विचार नहीं करते हैं। अब यहां रख के इसके आगे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछा, ये अभी आधा मेरे ख्याल में एक पेज और है तात्पर्य, इसको कल चालू करें। पर अभी मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक हमने जो यहां पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, इसमें कम से कम कोई 4 व्यक्ति भी आप बोलो कि 2 बातें, 1 बात आपको क्या ऐसी लगी जो आपके जीवन में काम की है। क्लास पूरी हो उस 15 मिनट पहले पूरी करके कुछ विचार विमर्श करके, और क्या पले पड़ा, क्या हमको मिला उसका, तो थोड़ा आज जा रहे हैं यहां से कुछ तो ले जाए ना यहां से। तो हर एक क्लास के अंदर से हर एक व्यक्ति, अब मैं उस दिन महाराज परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज ने एक शब्द कहे थे कि आश्रय किसके लिए आवश्यक है, किसी को याद है, मैं उस दिन कह रहा था, उसी दिन मैंने कथा में कहा 2 याद आए फिर 3 याद आए, आश्रय किसके लिए आवश्यक है। महाराज ने 4-5 दिन पहले कथा में कहा था वो आश्रय के बगैर काम नहीं चलेगा, किसको, लता वनिता और पंडिता, 3 थे ना महाराज, वनिता लता और पंडिता, बराबर। वनिता स्त्री, लता क्रीपर और पंडिता, 3 थे और कुछ था, 3 ना, कविता या वनिता है, कविता वनिता लता पंडित, महाराज ने पंडिता बोला था ना, पंडिता बोला ना, बोला आश्रय चाहिए। तो ऐसे कोई बात आज के अभी तक प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो प्रभुपाद जी ने लिखी है तात्पर्य में, कोई एक बात जो आपके मन में आई हो जिसको आप ग्रहण करना चाहते हैं और जीवन में कुछ संकल्प करना चाहते हैं। एक तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्रभुपाद ने पढ़ा भगवद गीता का, व्यवसाय आत्मिक व बुद्धि का, कि गुरु के वचनों जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और ये स्कान की स्थापना उसे एक श्लोक के तात्पर्य के ऊपर टिकी हुई है। केवल एक श्लोक के तात्पर्य से इस्कान की स्थापना के लिए प्रभुपाद कटिबद्ध हो गए। तो एक विचार भी हमारा कभी ठीक तरह से हमारे अंदर में उतर जाए तो हमारा जो भक्त बनने का उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए। हिरण्यकशिप से प्रहलाद महाराज ने पूछा, यहां से कल आगे इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत है। अब असल में श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी अभी आ रहे हैं, अब श्लोक के शब्दों का वर्णन अब करने जा रहे हैं। मेरे को याद है यहीं से आज से कोई 15-20 साल पहले पहला श्लोक जब शुरू किया था भागवत का, तो एक दिन वृद्ध भागवत स्वामी महाराज ने क्लास दिया था, बोला आधे में रख दिया, बोला कल, दूसरे दिन मेरे को बोला क्लास दो, तीसरे दिन ऐसे 3-4 लोगों ने उसको पूरा किया था क्योंकि तात्पर्य बड़ा था और तात्पर्य को समझना चाहिए। तो आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो अब आज के तात्पर्य से क्या आपने समझा? हाँ प्रभु, मैं और मेरा पशु बुद्धि है, और प्रभुपाद ने इसको और विस्तृत किया है, वो क्या कहा? मैं और मेरा ये है माया, और पशु बुद्धि को प्रभुपाद ने एक शब्द और बड़ा अच्छा कहा था। हाँ जी, मैं भगवान सब भगवान, ये है पशु बुद्धि। अच्छा, मैं भगवान सब भगवान, चलो ये तो मायावादियों का है, लेकिन सामान्य लोग से कहें कि मैं स्वामी सब स्वामी, मैं मालिक सब मालिक, ये पशु बुद्धि है, तो दूसरी पशु बुद्धि, ये पशु बुद्धि हुई, तो पशु बुद्धि नाश कब होती है? भक्ति करने से। क्या होगा भक्ति करने से? भगवान प्रसन्न। पशु बुद्धि जाती है प्रहलाद महाराज के शब्दों में भगवान के प्रसन्न होने से। अब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? क्या बोला? हाँ आपने बोला कुछ अच्छा, सही बोला, गुरु के प्रसन्न होने से। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो, और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी आज्ञा का पालन करने से। और उनकी आज्ञा क्या है? ये प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से एक शिष्य ने, प्रभुपाद मैं आपको कैसे प्रश्न कर सकता हूं? प्रभुपाद थोड़े शांत रह के उत्तर क्या दिया, जब कृष्ण से प्रेम करना लगोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना, हम आए क्यों है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ना, वो अगर प्राप्त कर लिया तो गुरु प्रसन्न हो गया और कृष्ण की प्रसन्नता मिल गई। तो हम इसका मतलब पशु बुद्धि जाएगी भगवान की प्रसन्नता से, भगवान प्रसन्न होंगे गुरु के प्रसन्न होने से। गुरु प्रसन्न होगा जब उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी आज्ञा है कृष्ण प्रेम की, भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रकट करो। तो कौन सी भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्रकट करना है? प्रेम भक्ति को तो चाह प्रकट करना है, साधन भक्ति के द्वारा। दूसरे भक्त को प्रेम करने से अच्छा है, साधन भक्ति को ठीक तरह करने से। साधन भक्ति को ठीक तरह करने से भाव भक्ति जागृत होगी, जो हमारे अंदर पड़ी है उसको जगाना है। और भाव भक्ति तक नहीं पहुंचे तो फिर हमारा काम अधूरा रह जाएगा। निश्चित रूप से उसको हमको जगाना है, यह दृढ़ संकल्प करना है, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम भगवान ने भर के भेजा है और यह कहता है प्रहलाद, मेरा हो गया भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे ये बुद्धि हो गई। एक अन्य पुराणों में वर्णन है कि शंड और अमरक ने कृत्या बनाई और प्रहलाद को मारने के लिए भेजी। कृत्या ने प्रहलाद महाराज के पास मारने को गई, प्रहलाद तो भगवान के भजन में थे, गोविंद गोपाल गा रहे थे, हरे कृष्ण गा रहे थे, तो कृत्या कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कृत्या का नेम था कि जो बनाए, जिसको मारने जाए उसको मार न सके तो जिसने बनाई उसी को मारती है। वापस आके शंडोर अमर को मार दिया। प्रहलाद को जब पता लगा तो घोषणा की,
प्रहलाद ने कहा जिन्होंने मेरे को विष दिया, जिन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे फेंका, जिन्होंने सांपों के बीच में डसने के लिए डाला, जिसने हाथी के पांव के नीचे मुझे कुचलने के लिए रखा, उनके प्रति मेरी दोष बुद्धि नहीं थी तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाए। और दोनों जीवित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में घोषणा की थी कि पांडवों और कौरवों के बीच में मेरा कोई पक्षपात नहीं है, तो ये परीक्षित का शरीर पुनः जीवित हो जाए। मेरा पक्षपात किसी के साथ नहीं। तो ये भगवान और भक्तवान के भक्त किसी से मित्र शत्रुता का भाव रखते ही नहीं है। ये बुद्धि जो है पशु बुद्धि का नाश होना है। इतने तात्पर्य में हमने क्या बातें पढ़े? कोई खास बात और? कोई खास बात है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ प्रभु जी, हरी गिरिवा जी, समय थोड़ा मैं सोचा हूँ 10-15 मिनट इसमें रखने चाहिए, तो क्योंकि सबको थोड़ा, और छोटी कापी पेन क्लास में लाने की, एक मेरे कहना सर आप मंदिर की तरफ से एक कापी पेन दे दो, नहीं तो अपना ये ले सकें, तो नहीं तो उनको लेके आए इधर बैठे पढ़ने का। हाँ, इसका नाम प्रभुपाद ने क्लास रखा है। कापी पेन ला के दो शब्द लिखने चाहिए। और बहुत अच्छी बातें कहीं मिल के रोज आती हैं। वो शरणागति के 6 लक्षण बोले थे उस दिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने, 6 लक्षण बोले थे। उनमें सबसे मुख्य लक्षण कौन सा था? कौन सा? गोप्तृते, ये सबसे मुख्य लक्षण था। और 5 और थे, 6, ये लिखने चाहिए ना। भूल जाना ये कलयुग का दोष है, हम याद नहीं रख सकते हैं। लिखा होगा तो काम आएगा। ये अभ्यास करना चाहिए। इतना सारा प्रभुपाद का लिखा हुआ है, अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं। यहां जो एक श्लोक है, इतनी बार आवृत्ति होती है, याद क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं। हमने 10 बार इसको आवृत्ति किया ना, अभी याद होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं। एक छोटा कागज हो, उसके ऊपर रोज श्लोक लिखें, एक दिन पूरा पढ़ें, तो कम से कम कुछ शब्द तो दिमाग में अटकेंगे कि नहीं अटकेंगे? ये आज के श्लोक में देख लो क्या दिमाग में अटक रहा है। स यदा अनु वर्तते, अनु वर्तते, जब भगवान अनुग्रह करेंगे। फिर क्या लिखा है? पुंशाम तो मनु पशु बुद्धि विविध्यते। अभी का थोड़ा सोचेंगे तो आ जाएगा। हम सोचेंगे कि ये हम जैसे, ये हमारे को करना है, इसलिए हम आए हैं। ये हमारी हृदय के, आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी? आप कहते हैं प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को कहा, उसकी पशु बुद्धि गई नहीं। एक तो ये प्रश्न, दूसरा क्या है? पितामह भीष्म ने दुर्योधन को समझाया, उसकी पशु बुद्धि गई नहीं। मैं तीसरा कहता हूं, संजय ने पूरी गीता धृतराष्ट्र को सुनाई, उसकी पशु बुद्धि गई नहीं। नहीं, पूरी गीता सुनी ना, पशु बुद्धि गई नहीं। ये दोनों महाजन है, संजय महाजन नहीं है, ये भी ठीक है। महाजनों ने कहा, फिर भी उनकी पशु बुद्धि गई नहीं। इसको आप ऐसे कहें, अभी इनको छोड़ो, चलो महाजनों को छोड़ो, भगवान की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम रोना बंद कर, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, फिर भी रो रहा था। तो भगवान के कहने के ऊपर क्यों नहीं बुद्धि गई युधिष्ठिर की? वहां क्या लिखा है प्रभुपाद ने? वही भगवान परमात्मा के रूप में उसके अंदर बैठ के कह रहा था, मेरी बात मत मानो। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को श्रेय देना था। तो यहां भी ये नहीं होने का, भगवान की इच्छा थी, ये लीला के अंतर्गत ऐसे होना है, ये भगवान की इच्छा है। नहीं तो महाजन के संग से
एक क्षण मात्र महाजन के संग से किसी का उद्धार हो सकता है। इसमें हम जान दोनों को, दोनों में देव है, न हिरण्यकशिपु असुर है, वो तो भगवान का अपना पार्षद है, इसलिए वो तो उसके अंदर मशीन ऐसी डाली हुई थी किसी की बात नहीं सुनना है, हमको वही करना है जो भगवान को अच्छा लगेगा। और ऐसे दुर्योधन भी बलराम जी का नित्य शिष्य है और वो नवात कवतों का राजा है, मेरे ख्याल में क्या उसमें नवात कवचों का राजा ऐसे कुछ बलराम जी का गर्ग संहिता में लिखा है कि मैं क्या करूं, बोला चलना मैं आपको शिष्य बनाऊंगा और आप इस लीला में भाग लें। तो एक परम पूज्य राजा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि पहले असुर कौन है और असुर का पार्ट कौन कर रहे हैं, उनको भी अलग अलग करना चाहिए ना, कुछ असुर है कुछ असुर नहीं है। ये धृतराष्ट्र असुर नहीं है, वैसे कंस असुर है, तो कुछ असुर है कुछ असुर नहीं है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। और इसमें कोई आप, इसमें ऐसा है कि प्रचार करने से सभी लोग, चाहे महाजन प्रचार करे तो सब लोग भक्त हो जाए, ये कोई बड़ी, ये जरूरी नहीं है। उसका काम है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के प्रसन्न करने के लिए वो सत्य बोलेगा, सामने वाले में परिवर्तन आएगा भगवान चाहेगा तो। ये प्रभुपाद जी ने भागवत के आधार पे अमेरिका में उतरते ही कहा कि कृष्ण आप अगर मुझे लाए हैं तो इनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो आप मुझसे कहलाएं जो इनको समझने के लिए भी सामर्थ्य दीजिए। ये महाजन की प्रचार की दृष्टि होती है, मैं प्रचार करके किसी को भक्त बनाऊंगा ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, कृष्ण इनके हृदय में बैठे हुए हैं, ये मुझसे वो कहलाएं जो इनके हित के लिए है और जो कृष्ण इनको अपनी कृपा करके भक्त बनाए, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो संभव है। लेकिन ये नहीं हुआ, इसमें लीला है, ये भगवान की लीला के लिए है, इसमें कोई संसारी उदाहरण नहीं। महाराज आशीर्वाद। विदुर जी के कहने से नहीं, पहले ऐसे एक पूरा आर्टिकल मैंने थोड़े दिन पहले भक्ति वैभव वालों को पढ़ाया था कि शरणागति बहुत जरूरी है, पहले शरणागति अर्जुन की थी इसलिए उसको गीता समझ में आई, और धृतराष्ट्र की शरणागति नहीं थी इसलिए नहीं समझ में आई, जब विदुर आया तो फिर उस शरणागति हो गई। हाँ नहीं, उसके बाद नहीं, जब युद्ध समाप्त हो गया दोबारा जब विदुर आया फिर लेके गए ना, नहीं उस वक्त कहते हैं उसकी बुद्धि कम से कम बदल गई, घर छोड़ के चला गया और मतलब निकाला तो दोबारा जब आया तो कम से कम उसकी बात सुनी, पहले तो सुनी भी नहीं थी। निशरणगत नहीं आई, वो भी तो महाजन है, विदुर भी तो महाजन है, नहीं पशु बुद्धि नहीं गया पर परंतु अंत में जो है वो किसी तरह कैसे निकला, पशु बुद्धि बहुत से की नहीं गई, अब क्या कह सकते हैं पशु बुद्धि भगवान की कृपा से जाती है, ये जब सुना तो इनके ऊपर अभी तक भगवान की कृपा नहीं थी तब नहीं गई, सीधी बात तो ये है। इस श्लोक के आधार पर पशु बुद्धि उसकी जाती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो 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 गीता भागवत पढ़ते हैं उनका पशु बुद्धि नहीं रहना चाहिए, लेकिन पशुभाग प्रभुपाद ने लिखा है जो अच्छी तरह से हरे कृष्णा मंत्र जपेगा हृदय शुद्ध होगा और तब वो गीता भागवत पढ़ेगा तब पद पशु बुद्धि जाएगा। कैसे तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं रोज ऐसे सर घुमाते पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, ऐसे कैसे बैठे हैं, बहुत से पढ़ रहे हैं, इतने भागवत कथा करने वाले हैं लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करें, भगवान की कृपा होगी तब होगी, ये प्रहलाद महाराज के शब्दों को पक्का कर लो, भगवान की कृपा से पशु बुद्धि जाएगी, भगवान की कृपा गुरु की कृपा से होगी और गुरु की कृपा भक्ति के मार्ग से ही हमारा कल्याण होगा और कोई रास्ता नहीं। बात सही है, वो 40 हमारे हो गए तब भी नहीं गई, अब क्या करें। नहीं गई क्या करें, अभी भी सोचते हैं कि ये बचा के रखें, बेटे को भेजना है, देखो है ना पशु बुद्धि, गई तो नहीं, तो नहीं गई ये क्या करें, मेरा तेरा अभी तक है, ये बार बार सुनते सुनते हथौड़े मारने पड़ेंगे तब जाएगी। हरे कृष्ण, महाराज कुछ दो शब्द कहें और। हाँ जी, तो पशु बुद्धि है ना। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। कल यहां से आगे कथा को चलाना।